अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम इल्म व हिकमत और मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर ज़ुबैर अहमद। हम ये देखते हैं नाज़रीन के दुनिया में इंसान जो आया है वो इस आजमाइश के लिए आया है जो कि अल्लाह ताला की तरफ से उसे दी गई है, और इसमें इस आजमाइश में जब वो पूरा उतरेगा तो अल्लाह ताला उसे जन्नत का तमगा अता करेगा। हम ये भी देखते हैं कि इंसान को जो बुनियादी अकायद दिए गए उनमें तौहीद है, रिसालत है, आखिरत है, इन पर ईमान लाना उसे ज़रूरी है, लेकिन जब हुकूक और फराइज की बात आती है तो अल्लाह ताला बंदों में जो हुकूक बताता है लोगों को वो सबसे पहले वालिदैन के हुकूक की बात करता है। यानी मेरा एक तो ये है कि अल्लाह ताला के हुकूक हैं, लेकिन जब बंदों के साथ मुझे मामला करना है तो जो सबसे पहला हक है वो मेरे वालिदैन का है। आज हम गुफ्तगू करेंगे कि वालिदैन के हुकूक और फराइज क्या हैं, यानी न सिर्फ ये कि वालिदैन के हुकूक क्या हैं बल्कि उनके फराइज औलाद की जानिब क्या हैं वो भी बात करेंगे। मेरे साथ तशरीफ रखते हैं जनाब जावेद अहमद गामदी साहब। अस्सलाम वालेकुम जावेद साहब।
वालेकुम अस्सलाम।
जावेद साहब, कुरान मजीद अल्लाह ताला के बाद जो सबसे पहले इंसानों में जो बात करता है, इंसानों के माबैन जो सलूक की रवैये की बात करता है, वालिदैन के साथ बेहतर सलूक की बात करता है, इसकी वजह क्या है, इसकी हिकमत क्या है?
इसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि वालदैन के हुकूक अदा करने का जब वक्त आता है तो असल में हम अपने हुकूक को फराइज में मशगूल हो चुके होते हैं। देखिए ना, एक बच्चे की पैदाइश हुई, जब बच्चे की पैदाइश हुई तो उस वक्त तो वालदैन के ऊपर मुनहसर होता है, वालदैन उसको जन्म देते, पालते, उसकी तरबियत करते, उसकी तालीम का बंदोबस्त करते। आप जानते हैं कि माँ किस तरीके से पेट में रखती है, किस मुश्किल से जन्म देती है, उसके बाद फिर रातों को जाग कर किस तरह से उसका ख्याल रखती है। बच्चे की कभी आप पिछले 3-4 साल की भी जिसमें माँ ने उसको पाला होता है कभी तस्वीर कशी करें तो ये हकीकत है कि जितनी मशक्कत में उठाती है, जिस तरीके से ये मामलात करती है, आप अंदाज़ा नहीं कर सकते। कुरान मजीद ने भी ये तस्वीर एक जगह खींची है और ये बताया कि कैसे तकलीफ पर तकलीफ उठाकर, मशक्कत पर मशक्कत उठाकर वो तुम्हें पालती है, कैसे तुम्हारी परवरिश करती है। अब ये मामला वो तो कर डालते हैं, फितरी अर्ज से कर डालते हैं। आम तौर पर कम ही ऐसा होता है कि वालदैन उसमें कोताही करें, वो कर डालते हैं। जिस वक्त अब हमारे उनके मामलात को देखने का वक्त आता है,
यानी जब बच्चा जवान हो जाता है,
हम जवान हो जाएंगे, जवान होते हैं तो हमारे सामने एक पूरी जिंदगी पड़ी होती है। अच्छा, उसमें क्या होता है, हमें अपनी माश की फिक्र करनी है, अपने कैरियर की तरफ जाना है, कहीं तालीम पाने के लिए बाहर जाना है, कारोबार के नए नए मौके तलाश करने हैं, कहीं मुलाजमत करना है, तो एक बड़ी उमंग होती है आदमी के अंदर आगे बढ़ने की, जिसमें अगर आप देखें तो एक खास तरह की नरगसियत सी पैदा हो जाती है, यानी आदमी अपने सिवा फिर किसी तरफ निगाह उठा के नहीं देखता। अच्छा, जरा और आगे बढ़ते हैं तो मोहब्बत के जज्बात पैदा हो जाते हैं, वो भी खुदा के रखे हुए हैं। वो मोहब्बत के जज्बात कभी अपना जाहिर में ज़ुहूर कर देते हैं, कभी बातिन में मौजूद होते हैं, तो हमारी सारी तवज्जुहात का मरकज अब कोई रफीक हयात बन जाता है।
ठीक है,
यानी उसकी मुख्तलिफ सूरतें हो सकती हैं। अगर किसी के साथ कोई ताल्लुक नहीं भी ज़हनी लिहाज से पैदा हुआ, या खानदान ऐसा कोई मामला नहीं है, या और कोई चीज नहीं है, तो आप अपने बातिन के अंदर ही वो चीजें महसूस करने लग जाते हैं।
ठीक है,
इंसान की फितरत ही ऐसे बनाई गई है, तो आपकी तवज्जुहात का सारा मरकज उधर होता है, और आप जानते हैं कि उसमें आदमी कमो बेशंदा बहरा ही होता है। यानी जवानी का जमाना है, शबाब का दौर है, सवाए महबूब के कोई और नजर ही नहीं आ रहा होता, उसमें ना इधर देखता है ना उधर देखता है। वालदैन भी अगर रोकने की कोशिश करें तो उनके खिलाफ भी एक रद्दमल सा पैदा होता है, औलाद हो जाती, उसके बाद शादी हो गई, औलाद हो गई। अब औलाद है तो वो जो कुछ वालदैन के जज्बात थे वो सब जज्बात इधर भी आ जाते हैं। आपकी सारी तवज्जुहात का मरकज अब आपका बच्चा होता है, आपकी बच्ची होती है, परवरिश कर रहे हैं, तालीम दिला रहे हैं, ये सब कर रहे हैं। इसमें ये अंदेशा पैदा होता है कि वो हस्तियां जिन्होंने आपको जन्म दिया था, जिन्होंने आपकी परवरिश की थी, जिन्होंने आपको पाला था, जिन्होंने अपनी शफकतों के साए में आपकी तरबियत की थी, अब वो महरूम हो जाएंगे इससे। अच्छा, और खास तौर पर जिस वक्त वो ज्यादा बूढ़े हो गए, जब ज्यादा बूढ़े हो गए हो फिर और भी ज्यादा अंदेशा हो जाता है। यानी जब तक आपके कुछ मफादात उनसे वाबस्ता होते हैं, कुछ उनसे लेना भी होता है, कुछ अभी भी जिंदगी के मामलात वो अंजाम दे रहे होते हैं, उस वक्त जरा कम अंदेशा होता है। लेकिन अगर बूढ़े हो गए, बिल्कुल बेकार होके रह गए, यानी जिसको कुरान मजीद ने बयान किया है कि हड्डियों का ढांचा बन गया है, تو اس موقع پر پھر ایسے لگتا ہے جیسے ایک بار اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر ڈال دی ہے. اس وجہ سے خاص طور پر توجہ دلائی گئی ہے. بہت سے لوگ یہ پوچھتے ہیں قرآن مجید والدین کے حقوق کے بارے میں جگہ جگہ توجہ دلاتا ہے, سورہ دلائی ہے, سورہ احقاف میں دلائی ہے, سورہ بنی اسرائیل میں دلائی ہے, جہاں دین کے بنیادی احکام بیان کیے ہیں شرک کا ذکر کر کے یا توحید کا ذکر کر کے, اس کے بعد وہ بالوالدین احسانا. اچھا پھر بڑی ترغیب بھی دی ہے, یہ کہا بھی ہے کہ دیکھو اس طریقے سے انہوں نے تمہیں پالا تھا, تمہیں بھی اس طریقے سے اپنے بازو رحمت کے اور کرم کے بازو ان کے اوپر جھکائے رکھنے چاہیے, جناح ذل کہا ہے جس کو. تو یہ جو ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں, تو بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ یہ اولاد کے بارے میں نہیں کہا, اس لیے نہیں کہا, ایک فطری ارتھ موجود ہوتا ہے, اس میں کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. یعنی والدین ہی کے بارے میں توجہ دلانے کی ضرورت ہوتی ہے, والدین کو توجہ دلانے کی ضرورت کہیں شاذ پڑتی ہے, وہ پھر یہ توقع کی جاتی ہے کہ کوئی شریف النفس آدمی بتا دے گا, گھر والے بتا دیں گے, گرد و پیش کے لوگ بتا دیں گے, ورنہ ایسا ہوتا نہیں کہ والدین
کو یہ تو توجہ دلائی گئی ہے نا کہ اپنی اولاد کو قتل نہ کرو اس کے ڈر سے, مفلسی کے ڈر.
جی ہاں, وہ تو ایک بڑا معاملہ تھا,
وہ تو بڑا معاملہ,
ظاہر ایک بہت بڑا معاملہ تھا, اس وجہ سے اس کو موضوع بنا لیا گیا. لیکن عام طور پر یہ کہنے کی ضرورت نہیں پیش آئی کہ والدین اولاد کے حقوق ادا کریں, یا اولاد کے حقوق یہ اور یہ ہیں ان کو یہ ادا کرنے چاہیے. والدین کے بارے میں جگہ جگہ یہ ذکر کیا گیا, اور میں نے عرض کیا کہ اس کی وجہ یہی ہے, آپ دیکھیں عام تجربہ بھی یہی ہے. یعنی کتنے والدین ہیں جنہوں نے کبھی اپنی اولاد کو نظر انداز کر دیا ہو, لیکن ایسے بہت ہیں کہ جن کو ان کی اولاد نے نظر انداز کر دیا.
ٹھیک ہے جاوید صاحب, یہ والدین کی آپ نے جو قربانیاں جس طرح سے بتائی ہیں, تو والدین کی قربانیاں ہیں, اور جو والد ہوتا ہے وہ بھی اپنی پوری زندگی کھپا دیتا ہے, اپنی توانائیاں صرف کر دیتا ہے اپنی اولاد کی پرورش کے لیے, اس کی تعلیم و تربیت کے لیے, اپنے آپ کو ایک طرح سے وہ گروی رکھ دیتا ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے تین مرتبہ فرمایا تمہاری ماں کا حق ہے, اور ایک مرتبہ فرمایا تمہارے باپ کا. قرآن مجید میں بھی اشارتاً یہ موجود ہے کہ دیکھو تمہاری ماں نے جو ہے وہ اتنا زوف اٹھایا, اتنا جو وہ تمہیں پالا پوسا. تو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ والدین کی قربانیوں میں جو دین ہمیں بتا رہا ہے قرآن سنت سے جو پتا چل رہا ہے, اس میں شفٹ زیادہ والدہ کی طرف ہے, والدہ زیادہ اس کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے, حالانکہ والد بھی پوری توانائی لگا دیتا ہے اپنی اولاد کے لیے. ایسا کیوں ہے, ڈیفرنشیٹ کیوں کیا گیا ہے؟
دیکھیے ابتدا میں تو کوئی فرق نہیں کیا گیا, بالکل والدین احسان ہی کہا گیا, یعنی تمہارا رویہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا ہونا چاہیے, آخری درجے کے حسن سلوک کا ہونا چاہیے, جگہ جگہ دونوں ہی کا ذکر کیا گیا. لیکن آگے جب یہ بتانا پیش نظر تھا کہ والدہ کے ساتھ, تو وہاں پھر صنف ضعیف ہے, اس کو زیادہ ضرورت ہے.
اچھا ٹھیک ہے,
باپ پھر اپنی جگہ پر کھڑا ہے, اس کے پاس اس زمانے کے لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو بہت سے اسباب بھی ہیں. آج بھی دنیا کے اندر بہت بڑی اکثریت انہی لوگوں کی ہے جہاں عورتیں تو ہاؤس وائف کی حیثیت ہی رکھتی ہیں, یعنی باپ آخر دم تک کچھ وسائل بھی رکھتا ہوتا ہے, ذرائع بھی رکھتا ہوتا ہے. تو یہاں پر بھی توجہ دلانے میں اس پہلو نے نمایاں پہلو چیز اختیار کر لی ہے. پھر یہ ہے کہ اس میں کوئی شبہ بھی نہیں کہ ہماری جو ناتوانی کا زمانہ ہے, اس میں جو مشقت ماں اٹھاتی ہے باپ نہیں اٹھاتا.
صحیح,
یعنی باپ شفقت کا سایہ فراہم کرتا ہے, وہ بچوں کے ساتھ محبت کرتا ہے, ان کے لیے کما کے لاتا ہے. کمانا نسبتاً آسان کام ہے, اپنے لیے کماتے ہیں, ہم اپنی بیوی کے لیے بھی کماتے ہیں, گھر والوں کے لیے بھی کماتے ہیں, اور بعض اوقات آپ پیسے فراہم کر کے فارغ ہو جاتے ہیں. لیکن بچے کے ساتھ جو ماں کرتی ہے, آپ پیدائشی کے معاملے کو دیکھ لیجیے نا, یا چند لمحوں کی مقاربت کے بعد باپ تو فارغ ہو گیا, لیکن وہ 9 مہینے تک کم و بیش اسے اٹھائے اٹھائے پھرتی ہے. مجھے وہ بات یاد آتی ہے, کسی صاحب نے سنائی کہ جب افغانستان میں علماء کی حکومت قائم ہو گئی, تو اس میں ایک مقدمہ اس نوعیت کا سامنے آ گیا جس میں بیٹے نے اپنی والدہ کو گھر سے نکال دیا. کوئی اس طرح کا معاملہ ہوا, اور اس کے نتیجے میں اس نے کچھ بدتمیزی بھی کی, ناشائستگی کا رویہ بھی اختیار کیا, گھر سے بھی نکال دیا. جب مقدمہ پیش ہوا تو جج صاحب نے اس کو یہ سزا دی. جب مقدمہ سنا, معلوم ہو گیا کہ واقعی اس کا جرم ہے, تو انہوں نے کہا کہ اس کے پیٹ کے اوپر ایک پانی کا گھڑا باندھ دیا جائے, اور اسے کہا جائے کہ یہ 9 مہینے تک اس کو باندھے رہے گا. اگر یہ محض لطیفہ بھی ہے, تو تب بھی بہرحال ایک بڑی حقیقت کو واضح کرتا ہے.
صحیح.
یعنی یہ بتانا اس سے مقصود ہے کہ ماں کے لیے یہ کتنی غیر معمولی مشقت ہوتی ہے. آپ جانتے ہیں اس بات کو کہ جس وقت کوئی بچے کو جنم دیتی ہے, تو اس وقت موت و حیات کی کشمکش سے گزرتی ہے.
صحیح بات.
یعنی وہ کوئی آسان معاملہ نہیں ہوتا, وہ اس سے گزرتی ہے, اور پورے شوق سے گزرتی ہے, بڑی رغبت سے گزرتی ہے. उसको जब बच्चा दिया जाता है तो वो अपनी सारी तकलीफें बोलकर उसको अपने सीने से जाती, फिर रात को दिन को बीमारी में तकलीफ में, यानी आप इसी से अंदाजा करें कि वो सोती नहीं है हकीकी मानों में कई बरस तक, इसलिए कि उसको ये अंदेशा होता है कि कहीं बच्चे पर मेरा बाजू ना आ जाए, कहीं ऐसा ना हो कि सोते में कोई तकलीफ इसको पहुंच जाए, अच्छा ये उठेगा कब। वो मामूली सी आवाज निकालता है। इंसान को आप देखिए कि कितना नातवा पैदा किया गया। मैं जब देखता हूँ कि जानवरों के बच्चे अल्लाह ताला ने ऐसे पैदा नहीं किए, उनको भी जरूरत होती है कि माँ का दूध पिए, वो इस वक्त के लिए माँ की हिफाजत भी चाहिए होती है, लेकिन वो चंद लम्हों में अपने पाँव पर खड़े हो जाते हैं। तो इंसान का बच्चा वो तो अपनी जरूरत बता नहीं सकता, उसको उठाना भी है आपने, उसको पकड़ना भी है आपने, खिलाना भी आपने, उसके धूप छांव का भी ख्याल आपने रखना है, तो ये माँ ही रखती है। और फिर उसके बाद सिर्फ यही नहीं है कि 3 साल 4 साल का बच्चा हो गया, हकीकत में तो माँ अपनी सारी शख्सियत सर्व कर देती है। अब उसकी तालीम, उसकी तरबियत, जैसे जैसे जमाने में तब्दीलियां आ रही हैं, अगर वाकई माँ जिम्मेदार हो तो उसकी जिम्मेदारियां बढ़ती जा रही हैं।
ठीक है,
यानी कदीम तमद्दुन में तो यह था कि चलिए बच्चा कुछ थोड़ा सा चलने फिरने काबिल हो गया तो अब कुछ ना होगा। अब यह है कि उसने कोई फन सीखना है, कोई इल्म सीखना है, किसी स्कूल में जाना है, उसको ले जाना है, उसको लाना है, उसके मामलात देखने हैं, उसको यहाँ ले जाना है, वहां ले जाना है, हजार किस्म के मसाइल पैदा हो जाते हैं जिनसे गुजरने के बाद वो बच्चा कुछ अफलातून और अरिस्तू बनता है। और उसके बाद फिर वो मालूम नहीं क्या क्या कहना शुरू कर देता है। उस बच्चे को तवज्जो दिलाई है कि तुम्हारी माँ ने ये कुछ किया था।
जावेद साहब, ये जो फरमाया गया उफ़िम वला तनहरहुमा वकुल लहुमा कौलन करीमा, उफ तक ना कहो और अच्छे अंदाज में गुफ्तगू करो, वालिदैन की नाफरमानी क्या शिर्क की हद तक ही महदूद है कि अगर वो शिर्क की कोई बात कहें तो बस तब उनकी बात ना मानो, इसके अलावा वो सारी चीजें वो है उनकी नाफरमानी काउंट होगी, हर चीज माननी है उनकी?
नहीं, देखिए कुरान मजीद ने जो ताबीर इख्तियार की है वो ही सही ताबीर है, वो ताबीर इताअत की नहीं है, बिल वालिदैन एहसाना है, यानी उनके साथ हुस्ने सुलूक। हुस्ने सुलूक का एक पहलू ये है कि उनकी बात को रद्द ना किया जाए, यानी ये जिसको हम इताअत कहते हैं, जब ये लफ्ज हम बोलते हैं तो इससे बिल्कुल एक हाकिम महकूम का सा तसव्वुर पैदा होता है।
हाँ, exactly.
कुरान मजीद ने ये बात नहीं की, ये ताबीर नहीं इख्तियार की। उसने जो ताबीर इख्तियार किया वो ये है कि वह बिल वालिदैन एहसाना, यानी तुम्हारा रवैया, और आप जानते हैं कि यहाँ एहसानन ये मस्तर है, ताकीद के लिए आया है, यानी अहसनु बिल वालिदैन एहसाना है, वालदैन के साथ हुस्ने सलूक करो जैसा कि हुस्ने सलूक करने का हक है।
ठीक है,
अगर आप ठीक तर्जमा करें तो ये होगा। तो वालदैन के साथ हुस्ने सलूक की तालीम दी गई है हमको। हुस्ने सलूक के हजार पहलू हैं, यानी उनके साथ सूए अदब का तरीका इख्तियार नहीं करना, उनके सामने अपनी आवाज ऊंची नहीं करनी, उनको उफ तुफ नहीं कहना, उनको झड़कना नहीं है, उनकी बात सुननी है, उनकी बीमारी तकलीफ में उनकी खिदमत करनी है, ये सारी चीजें उसमें शामिल होंगी।
ठीक है,
तो ये बात सुननी है, बात माननी है। आप जब किसी की इज्जत करते हैं, किसी को एहतराम देते हैं, आपके दिल में उसके लिए रिस्पेक्ट होती है, तो आप उसकी बात को मानते हैं। साफ बात माननी है, ये धैर्य का अमूमी बात होगी। वहां कुरान मजीद में मसला ये जेर बहस आ गया कि वालदैन उस वक्त तौहीद और शिर्क की कशमकश में मुकाबिल खड़े हो गए आगे।
ठीक,
तो कुरान मजीद ने ये बताया कि अल्लाह ताला के मामले में वालदैन भी ये हैसियत नहीं रखते कि वो बच्चे को अपनी किसी राय का पाबंद करें। यानी अल्लाह ताला की तौहीद को मानना है, अल्लाह की सिफात को मानना है, ये जाहिर है एक वाकई सूरत हाल की ताबीर है जो इख्तियार की गई है, और अम्बिया अलैहिस्सलाम के साहिब का तरीका यही होता है। मैंने कई मरतबा इसकी मिसालें तालिब इल्मों को भी दी हैं कि अब ये देखिए कि यूं नहीं तरीका इख्तियार किया कि अगर तुम्हें कोई मशक्कत पेश आ जाए, कोई मजबूरी पेश आ जाए तो तुम रोजा छोड़ सकते हो, नहीं, उसकी दो सूरतें ले ली, दो सूरतें बयान कर दी गई। यही तरीका आम तौर पर अंबिया अलैहिस्सलाम इख्तियार करते हैं, तो यहां पर एक वाकई सूरत हल पेश आई, उसमें बयान कर दिया गया। उसूली बात क्या है, वो जो रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई है कि ला ताअत अल मखलूकिन फी मासियतिल खालिक, जब अल्लाह की नाफरमानी का कोई मामला हो तो फिर किसी मखलूक की भी इताअत नहीं की जाती, उसकी बात नहीं मानी जाती। तो जिस तरीके से अगर अल्लाह की नाफरमानी करनी पड़ जाए किसी की इताअत के नतीजे में, तो ना वालदैन की बात मानी जाएगी, ना शौहर की बात मानी जाएगी, ना बीवी की बात मानी जाएगी, ना महबूब की बात मानी जाएगी, ना किसी भाई की बात मानी जाएगी, ना दोस्त की बात मानी जाएगी, ना किसी हुक्मरान की बात मानी जाएगी।
ठीक है,
इल्ला यह कि आदमी को इस्तरार पेश आ जाए कोई, वरना उसूल तो ये है कि ला ताअत अल मखलूकिन फी मासियत अल खालिक। तो इसलिए ये बात सिर्फ शिर्क तक महदूद नहीं है, बल्कि हर वो मामला जिसमें अल्लाह की कोई हिदायत सामने है, अल्लाह का कोई हक सामने है, कोई इंसाफ की चीज सामने है। आप देखें जहां इंसाफ के बारे में बयान किया है सूरह निसा में, दो जगह है ना, एक इज्तिमाई मामलात के बारे में कायम बिलकिस्त होने की ताकीद की है, सूरह निसा में इनफरादी मामलात में उसमें जिक्र करके ये कहा कि खा वो अपनी जात के खिलाफ हो, वालदैन के खिलाफ हो, इज्जा अकरबा के खिलाफ हो, उसमें ये बता दिया गया कि अल्लाह ही इसका हक है कि आप उसके साथ अपना मामला करें। तो हमें हक की शहादत देनी है, ईमान, हमारा ईमान तकाजा करता है कि हम अच्छा अमल करें और कायम बिलकिस्त रहें।
ठीक है,
या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू कव्वामीना लिल्लाह शुहदा बिलकिस्त। जाहिर है ये मामूली दर्जे की जिम्मेदारी नहीं है, इसमें बाज़ औक़ात वालदैन बिल्कुल नाइंसाफी पर खड़े होते हैं, उस वक्त उनसे शाइस्ता माजरत करनी चाहिए। इस तरह के मामलात में उनकी बात नहीं मानी जाएगी, उनकी बात जबकि वो अल्लाह के किसी हुक्म के खिलाफ ना हो, किसी हक के खिलाफ ना हो, उससे कोई बातिल आप इख्तियार ना कर रहे हो, उसमें खालिक की कोई मासियत लाजिम ना आती हो, वहां उनकी बात माननी चाहिए। यही इज्जत का तकाजा है, यही एहतराम का तकाजा है।
आपने ये फरमा दिया वजाहत के साथ कि मासियत की बातें अलग हैं, लेकिन आज की प्रैक्टिकल, आज के दौर में जरा मैं प्रैक्टिकल कुछ क्वेश्चन ले लेता हूँ। एक टर्म यूज की जाती है जावेद साहब, जिसे हम कहते हैं जनरेशन गैप। वालिदैन ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन उन्होंने अपनी औलाद को पढ़ा दिया, वो पढ़ लिख कर हो गए, वो क्वालिफाइड हो गए, या तो वो पढ़े लिखे नहीं हैं, या ऐसा है कि वो रिवायत पसंद लोग हैं। अब ये जो बच्चा है, ये जवान हुआ, इसने दुनिया देखी, ये कुछ और तरह की इसकी आदतें हैं, वो आदतें मासियत के जुमरे में नहीं आती। मैं मिसाल के तौर पर चंद एक बात बता देता हूँ। एक लड़का है, वो बड़े बाल रखना चाहता है, वो कोई ब्रेसलेट पहनना चाहता है हाथ में, कड़ा पहनना चाहता है, इस तरह की कुछ चीजें होती हैं। अब क्या होता है कि वो एक गैप सा क्रिएट हो जाता है, जनरेशन गैप आ जाता है। अब वालिदैन नाराज हो जाते हैं, सख्त नाराज होते हैं, और वो बच्चा कहता है कि जी दीन ने तो इसे मुझे मना नहीं किया, और आपको तो पता कुछ नहीं है, आप तो जानते नहीं है। अब ये जो सिचुएशन आती है, ऐसी सिचुएशन में क्या होना चाहिए? वालिदैन का फर्ज क्या है कि वो किस तरह से इस मामले को हैंडल करें, औलाद कैसे हैंडल करे? क्योंकि एक हदीस है जिसकी रोशनी में आपने फरमाया कि वालिद की खुशी अल्लाह की खुशी है और वालिद की नाराजगी अल्लाह की नाराजगी है, तो इसके जरा तनाजुर में बताइएगा।
देखिए, बात यह है कि जब ऐसी सूरत पेश आ जाती है, यानी वही बच्चा होता है, हमारे यहाँ पैदा हुआ, माँ ने उसको जन्म दिया, उसकी आगोश में उसने तरबियत पाई, वो उसके ऊपर बड़ा एतमाद भी रखती है, उसने उसको सीने से चिमटा के रखा होता है, वो फिर शऊर की उम्र को पहुंच जाने के बाद अपनी ख्वाहिशात, अपनी आरा बयान करना शुरू कर देता है। इस तब्दीली को, जो जाहिर है कि एक बड़ी तब्दीली है, हर इंसान में आती है, वालदैन को भी मलहूज रखना चाहिए, यानी उन्हें जानना चाहिए कि एक जिंदा और बेदार शख्सियत अब पैदा हो गई, इसने सोचना शुरू कर दिया, इसकी अब अपनी आरा है, तो हमें भी इसके मामले में बहुत वसत का रवैया इख्तियार करना चाहिए। देखिए, एक वो चीजें हैं जिस तरह के हमने पहले कहा कि शिर्क है, मासियत है, गुनाह के काम है, उनमें तो वालदैन को रोकना ही है,
वो तो अच्छा, सही है।
इसी तरह से बच्चा पढ़ने के लिए तैयार नहीं है, स्कूल जाने के लिए तैयार नहीं है, तो यहाँ पर तो उसकी बात नहीं मानी जाएगी, यानी उसको समझाया जाएगा, उसको बताया जाएगा और कहा जाएगा कि आप जाएं, ये आपके मुस्तकबिल के लिए बेहतर है, और आप जानते हैं कि माएँ किस तरीके से बिस्तर से उठा के भेजती हैं बच्चों को। जैसे जैसे बड़ा होता है बच्चा, तो कुछ सरकशी भी आ जाती है, तो वालदैन को ये बताना चाहिए कि ये तब्दीलियां आनी है, और ख़ास तौर पर टीनेजर्स में, यानी वो जो उम्र आ जाती है बरस 15 या के 16 के सन, उसमें मसाइल और बढ़ जाते हैं, तो उसमें ख़ास तौर पर बड़ी एहतियात का तकाजा होता है ताकि बच्चे में सरकशी पैदा ना हो जाए। आप छोटी चीज़ों को नज़रअंदाज करें, ये देखें कि कौन सी चीज़ें ऐसी हैं कि जो वाकई मासियत की चीज़ें हैं, खराबी की चीज़ें हैं, इसकी तरबियत से मुतल्लिक हैं, कौन सी चीज़ें जिनको गवारा किया जा सकता है, कौन सी चीज़ें जिनके बारे में मालूम है कि एक शौक है, 2-4 दिन में 10 दिन में पूरा हो जाएगा, तो इससे सरफे नजर कर लिया जाए, कहाँ एराज करना है, जरा मुंह मोड़ के गुजर जाना है, कहाँ थोड़ा ताकुब करना है, ये वालदैन को भी ये हिम्मत सीखनी चाहिए।
हाँ,
यानी ये जो यानी वालदैन बन के जीना, इसकी भी तरबियत होनी चाहिए। हमारे यहाँ
जनरेशन गैप आ जाता है ना बीच,
ये बड़ी फितरी बात है। ये देखिए, आजकल जरा ज्यादा आ जाता है, ये पहले भी आता था, ऐसे ही आता है, यानी जब से दुनिया बनी है थोड़ा फर्क पैदा होता है,
पहले भी आता था, लेकिन आज के जो वालिदैन है वो हमेशा ये कहते हैं हम तो ऐसे नहीं थे, हम तो अपने वालिदैन, और जबकि वो जब औलाद होते हैं तो उनका भी कुछ ना कुछ गैप तो रहा ही होता है, हर एक का ये लॉजिकल
बहुत होता है। एक साहब मेरे अजीज दोस्तों में से है, वो अपने बच्चे के बारे में बयान कर रहे थे कि ये देखिए ऐसी सरकशी इख्तियार कर ली, ये कर लिया, वो कर लिया। तो जब वो बात बयान कर चुके तो मैंने कहा अच्छा चाय पीजिए। थोड़ा चाय का उन्होंने जब एक दो घोंट ली तो मैंने पूछा कि ये आप अपने जरा बचपन को याद कीजिए, आपका अपने वालिद के साथ क्या रवैया था। तो कहने लगे कि सरकशी तो मैं भी ऐसे ही करता, मैंने भी कभी कोई बात मान कर नहीं दी। तो इंसान को ये भूल जाता है कि उसने क्या रवैया इख्तियार किया था। इस वजह से वालदैन को इस सूरत हाल को हिकमत से देखना चाहिए,
ठीक है,
और हिकमत ही से मामलात करने चाहिए। यानी आप तशद्दुद कर, अच्छा फिर इसमें बड़ा ताल्लुक इससे होता है कि आपका तमद्दुन क्या है, आप कहाँ रह रहे हैं, आपका जमाना क्या है, इसमें गिर्दोपेश का माहौल क्या है। मसलन मैंने देहात की जिंदगी देखी है, वहीं आंख खोली है, मुझे ये मालूम है कि उस देहाती माहौल में जो गिर्दोपेश में आपके लोग होते थे उनका बड़ा गहरा असर होता था। मैंने कई मरतबा ये वाक्य सुनाया है कि मेरी बड़ी बहन अपने घर से निकली गांव में, ये मैं देहात की बात बता रहा हूँ, घर से निकली और एक दूसरी बरादरी के बुजुर्ग जा रहे थे और उसके सर के ऊपर बच्ची थी, अभी कोई आप समझे 10-12 साल की बच्ची होगी, उसके सर पे दुपट्टा नहीं था, तो उन्होंने थप्पड़ मार दिया उसको। अब ये देखिए ना, एक माशरे के अंदर जिसमें इस तरह दो अलग अलग बरादरियां हैं, यानी ऐसा भी नहीं है कि वो कोई चचा थे या मामू थे, दूसरी बरादरी के बुजुर्ग थे, मस्जिद से आ रहे थे, गली में से गुजर रहे थे, मेरी वालदा दरवाजे में खड़ी थी, उन्होंने कहा कि एक थप्पड़ और उसको मारिए। अब ये देखिए एक माशरत वो थी, आज जरा ये काम आप करके देखें। तो गिर्दोपेश का माहौल क्या है, सोसाइटी कहाँ पे खड़ी है, क्या आप अगर थोड़ी सख्ती करेंगे तो माशरा भी आपका साथ देगा,
शायद नहीं देगा।
आज के जमाने में हम हो भी बहुत अकेले गए हैं। आप देखें जदीद शहरों में हर आदमी अपनी एक दुनिया में रह रहा है, यानी वो जो देहाती माशरत थी या कबायली माशरत थी या बरादरी की एक माशरत थी उसमें बहुत से बुजुर्ग होते थे जो मिलकर ये सारे काम करते थे। तो इस वजह से इसमें और भी ज्यादा एहतियात की जरूरत है और ये करनी चाहिए कि आप हिकमत से मामलात करें, इस तकसीम कर लें कौन सी चीजें हैं जो बर्दाश्त नहीं करनी, कौन सी चीजें हैं जिनके मामले में नसीहत का तरीका इख्तियार करना है लेकिन ज्यादा जोर नहीं देना, कौन सी चीजें हैं कि जिनके बारे में बस नसीहत कर देनी है हल्के फुल्के अंदाज में, कौन सी चीजें हैं कि जिनको सरफे नजर कर लेना है, वक्त दे देना है, ये जरा अंदाजा कर लेना चाहिए। और इसमें जो वालदैन के अंदर भी एक अना पैदा हो जाती है, मेरी बात क्यों नहीं मानी, और उसमें खास तौर पर ये मैंने तुम्हें पाला, मैंने ये किया, मैंने वो किया, इस तरह के एहसानात जताने का रवैया ये बजाय खुद वालदैन के शाय निशान भी नहीं होता। तो उन्हें भी अपनी तरबियत करनी चाहिए, एक पहलू ये है। दूसरा ये है कि बच्चों को बहरहाल स्कूल में भी ये बताना चाहिए, गिर्दोपेश के माहौल को भी ये बताना चाहिए कि वालदैन कौन है, उनकी क्या हैसियत है, कि वो भी उनकी खुशी का ख्याल रखें। जैसे आपने बताया कि रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही कहा, जब हम अपने बुजुर्गों को खुश करते हैं तो अल्लाह खुश होता है, जब उनको नाराज करते हैं तो अल्लाह भी नाराज होता है। इसलिए कि जब अल्लाह परवरदिगार आलम अपने बाद सबसे बड़ा हक उनका बयान कर रहा है तो हमें भी इस हैसियत को समझना और इसको मानना चाहिए। अच्छा उसमें बच्चे ये देखें कि वो क्या चीजें हैं कि जो उनके ख्याल में बहुत नागुजीर हैं। अगर वालदैन उन पे कोई एतराज कर रहे हैं तो चलिए आपने उनकी बात नहीं मानी तो ये भी एक माल हो सकता है, उसमें वालदैन को समझाया जा सकता है। लेकिन जैसे आपने मिसालें दी, जरा हजामत वक्त पे करा लिया करो, जरा कुछ बेहतर इंसानों की तरह रहा करो, तो आप भी उनकी खुशनूदी का ख्याल करके ये बात मान लें। यानी इसमें मंतिक झाड़ना, बहस करने के लिए तैयार हो जाना, हुकूक का फलसफा बयान करना, ये सारी चीजें जो है इनमें बच्चों की भी तरबियत करनी चाहिए, वो भी इसका ख्याल रखें। और अगर फर्ज कर लीजिए बच्चे किसी मौके पर ऐसा नहीं करते तो वालदैन भी जिस तरह मैंने अर्ज किया है कि ये देख लें कि क्या मामला फिर वाकई ऐसा है कि जिसमें सख्ती बरतने की जरूरत है। हर मामला ऐसा नहीं होता कि उसमें सख्ती बरती जाए, ये तवाज़ुन हम इज्तिहादी तौर पर कायम करते रहते हैं, कभी सख्ती भी करते हैं कभी नरमी भी करते हैं। ये सख्ती और नरमी जो है इन दोनों के बहम आमेजशी से अच्छी तरबियत होती है।
ठीक है जावेद साहब, ये एक रिवायत है कि एक सहाबी आए, उन्होंने जिहाद में जाने की इजाजत मांगी, तो आपने फरमाया क्या तुम्हारे वालिदैन अकेले हैं, बूढ़े हैं, ऐसा है तो पहले जाकर उनकी खिदमत करो, जिहाद पे आने से मना फरमा दिया आपने। इसकी तनाजुर में जरा ये बताइएगा कि अगर मैं समझता हूं कि मैं दीन का दाई हूं, मुझे दीन लोगों तक पहुंचाना है, मेरे वालिदैन घर पे हैं, अकेले हैं और वो उन्हें मेरी जरूरत भी है, लेकिन मैं किसी जगह चला जाता हूं, कोई दौरे पे चला जाता हूं और मेरा मकसद खालिसतन अल्लाह की रजा के लिए दीन पहुंचाना है दूसरों को, तो क्या वो दीन पहुंचाने की जिम्मेदारी भी मेरी खत्म हो जाएगी, मुझे वालिदैन के पास ही रहना है?
دیکھیے پہلے تو اصول کے طور پر یہ جان لیجئے کہ ایک عام آدمی پر دین پہنچانے کی ذمہ داری کس جگہ پہ ڈالی گئی ہے؟ وہ اس کے ماحول میں ڈالی گئی ہے. یعنی ہم میں سے ہر وہ شخص جو مسلمان ہے اس سے ایمان کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ وہ اچھا عمل کرے, اور دوسرا لازمی تقاضا یہ ہے کہ وہ اپنے گرد و پیش کے ماحول میں سچی بات لوگوں کو بتاتا رہے. آپ جہاں کاروبار کرتے ہیں, جہاں لوگوں کے پاس بیٹھتے ہیں, جس گلی میں رہتے ہیں, جن دوستوں سے ملتے ہیں, جن اعزاء اقربا سے آپ کا تعلق ہے, جب آپ کو موقع ملے حکمت کے ساتھ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر, یعنی جو بھلائی کی باتیں ہیں وہ لوگوں کو بتائیے, اور جو برائی کی کوئی چیز ہے اس سے شائستگی اور تہذیب کے ساتھ روکتے رہیے. اگر والدین بوڑھے ہیں, ان کو ضرورت ہے, تو آپ کی پہلی ذمہ داری یہ ہے ان کی خدمت کرنا. اسی طریقے سے اگر کسی آدمی کی شادی ہوئی ہے, ظاہر ہے کہ بیوی اس کی ذمہ داری ہے, بچے ہو گئے تو بچے اس کی ذمہ داری ہے, گھر میں والدین تو والدین ذمہ داری ہے. تو حالات کے لحاظ سے دیکھنا پڑے گا کہ آدمی, بہت سے لوگوں کو صحت کا شوق ہو سکتا ہے, کسی آدمی کو جگہ جگہ جا کے لوگوں کو تبلیغ کرنے کا شوق ہو سکتا ہے. والدین کی خدمت کرنا, والدین کی نگہداشت کرنا, والدین کی بیماری کا خیال رکھنا, والدین کے معاملات کو دیکھنا, اور اگر ضرورت ہے تو ان کے پاس رہنا, یہ تو آپ کے فرائض میں شامل ہے.
اچھا, آپ نے سٹارٹ میں یہ فرمایا تھا کہ جب بچہ جو ہے وہ بڑا ہوتا ہے تو پھر اس کے سامنے اس کا کیریئر ہوتا ہے, پھر اس کی رفیق حیات ہوتی ہے, پھر اس کے اپنے بچے ہوتے ہیں. ایسی صورتحال میں اگر ایک شخص ہے کہ جو اس کی بیوی چاہتی ہے کہ وہ والدین کے ساتھ نہ رہے, وہ الگ ہو جائے, والدین تنہا ہیں, اس سچویشن میں وہ مرد جو ہے وہ بیچ میں, وہ کس طرح کا ڈیسیجن لے, کیسے کرے, بیلنس کس طرح سے کرے؟
دیکھیے اصول کے لحاظ سے تو جب شادی کرتا ہے کوئی شخص تو بیوی کا حق ہے کہ وہ اس سے الگ گھر کا یا الگ کمرے کا یا الگ خلوت کا تقاضا کرے.
ٹھیک ہے,
یہ اس کا حق ہے. اچھا, لیکن سوال یہ ہے کہ شادی جب کی جا رہی ہے تو حالات دیکھے جائیں گے نا.
بالکل,
جس وقت آپ شادی کا فیصلہ کرتے ہیں تو میرے نزدیک یہ کوئی اندھوں اور بہروں کی طرح کرنے کا کام نہیں ہے, ایک دوسرے کے حالات جانیے. اب میں اس کو الٹ کے ایک مثال دے دیتا ہوں. ایک بچی ہے, آپ اسے شادی کرنا چاہتے ہیں, تنہا وہی ہے کہ جو اپنی ماں کی دیکھ بھال کر رہی ہے, باپ بھی دنیا سے رخصت ہو چکا ہے.
ہاں, یہ بھی ہو سکتا ہے.
آپ کو یہ جاننا چاہیے نا کہ اب یہ بھی آپ کی ذمہ داری ہوگی.
ٹھیک,
اس کو وہ اکیلا تو نہیں چھوڑ دے گی.
بالکل ٹھیک.
اسی طرح جب شادی ہو رہی ہے تو لڑکی کو بھی دیکھنا چاہیے کہ صورتحال کیا ہے, یعنی کیا ایسی شکل ہے کہ میں الگ گھر لے سکتی ہوں. دیکھیے اس کے پہلو معاشی بھی ہو سکتے ہیں, معاشرتی بھی ہو سکتے ہیں. ایک آدمی اس پوزیشن ہی میں نہیں ہے تو آپ شادی سے پہلے سوچ لیجیے, یہ حق ہے آپ کا. لیکن تمام حقوق جب بھی حاصل کرنے ہوں گے تو حالات کے اندر حاصل کرنے ہوں گے نا. آپ جانتے ہیں کہ کسی آدمی کا قرض آپ نے ادا کرنا ہے, عدالت میں مقدمہ چلا جاتا ہے, تو عدالت دیکھے گی کہ آپ قرض جان بوجھ کے ادا نہیں کر رہے ہیں, آپ کے پاس روپے, اچھا آپ کے پاس کوئی جائیداد ہے جو بیچی جا سکتی ہے, اگر یہ سب نہ ہو تو پھر کیا کرے گی؟
ٹھیک,
تو یہی معاملہ یہاں کرنا چاہیے. شادی سے پہلے ان حقائق کو واضح کر دینا چاہیے, یہ بتا دینا چاہیے مثلا کہ والدین کی تنہا میں ہی دیکھ بھال کرنے والا ہوں. ایسا نہیں ہے کہ میری والدہ یا میرا والد جو بوڑھے ہو چکے ہیں وہ کسی اور جگہ بھی جا سکتے ہیں. فرض کر لیجئے کہ دو یا تین یا چار بھائی ہیں, تقسیم بھی ہو جائے گا ان کا جانا, سب کی ذمہ داری بھی ہو جائے گی. اچھا, یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حالات کے لحاظ سے صرف آپ ہی ہوں کہ جو ان کی دیکھ بھال کر سکتے ہوں. تو یہ بات پہلے واضح کر دینی چاہیے تاکہ بعد میں کوئی جھگڑا پیدا نہ ہو. اصولاً اگر آپ پوچھیں گے تو یہ بیوی کا حق ہے, اور اس کا یہ حق ہے کہ وہ یہ دیکھ کر کہ اچھا اس آدمی کو تو والدین کے پاس رہنا ہوگا, میرے لیے یہ ممکن نہیں ہے, وہ معذرت کر دے کہ میں شادی نہیں کرنا چاہتی.
نہیں, ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ شادی کے وقت جب حالات دیکھے گئے وہ حالات کچھ اور تھے, بعد میں حالات تبدیل ہو گئے, ایسا ہو سکتا ہے؟
بالکل ہو سکتا ہے. تو اگر حالات تبدیل ہو گئے تو ان کو بھی علم و عقل کی بنیاد پر دیکھنا پڑے گا نا. اگر واقعی ذمہ داری پڑ گئی تو کیا میاں سے یہ کہا جائے گا کہ وہ والدین کو اٹھا گلی میں ڈال دیں؟ یہ نہیں ہو سکتا. یعنی ان کے کچھ حقوق ہیں, تو ان تمام چیزوں کو سامنے رکھ کر ہی آپ کو گھر بسانا ہوتا ہے. ان سے بالا تر ہو کر کچھ نہیں کیا جا سکتا. یا تو پہلے ہر چیز کو واضح کر لیجئے, بعد میں بھی اگر کوئی صورتحال پیش آ جائے تو علم و عقل کی روشنی میں فیصلہ ہوگا.
کچھ ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ اس میں واقعتاً ایسا ہوتا ہے کہ والدین چونکہ زیادہ پڑھے لکھے اگر نہیں ہوتے یا اس شعبے کے ماہر نہیں ہوتے جس شعبے کا ماہر وہ ان کا بچہ ہوتا ہے, تو والدین کوئی ایسا مشورہ دیتے ہیں اور انسسٹ کرتے ہیں کہ تم یہ کام کرو, اور بچہ جانتا ہے کہ یہ کام نہیں ہو پائے گا یا یہ جو مشورہ ہے یہ ٹھیک نہیں ہے, غلط ہے, और वो बच्चा जो है अब उस वो इनकार करना चाह रहा है, तो वो किस तरह से कैसे करेगा? वो उसे पता है कि मेरे वालिदैन बूढ़े हो गए और बूढ़े होने की वजह से चिड़चिड़े भी हैं, और जरा सा मैं मना करूंगा तो एकदम से जो है वो गुस्से में आ जाएंगे, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। अब वो क्या करे ऐसी सूरत है?
आपने किस शोबे जिंदगी का इख्तियार करना है, आपने किस खातून के साथ शादी करनी है, लड़की है तो उसने किसके साथ शादी करनी है, उसने जिंदगी में अपने लिए क्या मशागिल इख्तियार करने हैं, ये वो चीजें हैं कि जिसका हक आप ही को हासिल है। इसमें वालदैन को सिर्फ मशवरा देना चाहिए। ये मामला वो नहीं है जिनके अंदर वो तहक्कुम से काम लें, पढ़े हुए हों ना पढ़े हुए हों, कम पढ़े हों ज्यादा पढ़े हों, उनको ये बताना चाहिए कि ये वो मामला हैं जिनमें आपको मुदाखलत नहीं करनी चाहिए।
ठीक,
आप मशवरा दीजिए, अपने तजुर्बात बताइए, जरूर बताइए, लेकिन बस इससे आगे आपकी जिम्मेदारी नहीं है। इसी वजह से मैंने आपसे अर्ज किया था कि कुरान का जो तरीका है वही सही तरीका है। उसने बात इताअत से नहीं शुरू की, उसने वह बिल वालिदैन एहसाना से बात शुरू की। यानी अगर वो आपसे ये तकाजा करें कि उनका इलाज मुआवजा कराया जाए, उनके लिए माशी जरूरतों को फराहम किया जाए, अपने हालात के लिहाज से उनके लिए कोई मुनासिब कमरा हो, वो अगर फर्ज कर लीजिए कि ऐसी सूरत हाल में है कि जहाँ आप उनको साथ ही लेकर जाएं, तो यही मुनासिब होगा, तो ये सारे मामला ठीक है। अच्छा, जिंदगी के वो मामला जो जुजवन पेश आते हैं उनमें भी वो कोई बात कहते हैं तो आदमी को उनकी बात माननी चाहिए, लेकिन ये तीनों फैसले असल में पूरी इंसानी शख्सियत पर असरअंदाज होते हैं। इसमें उनको समझाना चाहिए, बात करनी चाहिए, वरना फिर शाइस्ता तरीके से माजरत कर देनी चाहिए। जिस चीज से हमें रोका गया है वो ये है कि जब इस तरह का इख्तलाफ भी पैदा हो जाए तो हम झिड़केंगे नहीं, बद तहजीबी का तरीका इख्तियार नहीं करेंगे, बल्कि मोहब्बत के साथ, शफकत के साथ उजर माजरत का तरीका इख्तियार करके ये कहेंगे कि इस मामले में हमारे लिए आपकी बात मानना मुमकिन नहीं।
ठीक है, आपने अभी फरमाया कि कैरियर के मामले में या आप किससे शादी करेंगे इस मामले में, आपने फरमाया कि वो राय या वो जो फैसला है वो आपका अपना ही फैसला होगा। ये रिवायत जो मिलती है जावेद साहब शादी के हवाले से कि उसमें वली की इजाजत जरूरी है, और बाज हमारे स्कॉलर्स जो है वो इसको इंतहा दर्जे का लाजिम हिस्सा करार देते हैं, और वो यहां तक आगे आते हैं कि अगर वली की इजाजत के बगैर कोई निकाह हो रहा है तो वो निकाह ही नहीं है सिरे से, तो फिर इस रिवायत को कैसे देखेंगे हम?
देखिए, मैंने तो अपनी किताब मीजान में इस रिवायत के बारे में अर्ज कर दिया है कि आम हालात में शादी एक खानदान को बनाने का अमल है, इसलिए इसके लिए जो आदाब मुकर्रर किए गए हैं वो यही हैं कि वालदैन शादी करते हैं, आयजा शरीक होते हैं, अकरबा शरीक होते हैं, बड़े लोग ये मामला करते हैं, उनकी इजाजत क्या, बल्कि उनकी राय इसमें शामिल होनी चाहिए। और अगर ऐसा नहीं हुआ किसी जगह तो वजह मालूम करने का भी मुआशरे को हक हासिल है, ऐसा क्यों नहीं किया आपने, क्या सबब है इसका। अच्छा, लेकिन आखिरी फैसला किसके पास है?
ठीक है,
वो फैसला वली के पास नहीं है, वो फैसला जिसकी शादी होनी है वो औरत है या मर्द है उसके पास है, आखिरी हक उसी का है। ये जितनी चीजें हैं इनका ताल्लुक उन आदाब से है, अच्छी माशरत से, अच्छी तहजीब से है, और यही होना भी चाहिए, इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। जब आप कोई भी बात करते हैं, मिसाल के तौर पर एक लड़का या एक लड़की मेरे पास आती है और वो आके ये बयान करते हैं कि जी हम वालदैन की इजाजत के बगैर शादी करना चाहते हैं, मुझे मेरा फर्ज है कि मैं पूछूं, अगर मैं अदालत में हूं तब भी पूछूं, माशरे में मेरी कोई हैसियत है तब भी पूछूं कि क्या वजह है इसकी, क्या सबब है, यानी वालदैन को क्यों छोड़ के आप शादी कर रहे हैं। तो जाहिर है कि इसमें फिर उनकी राय मालूम की जाएगी, सबब मालूम किया जाएगा, हो सकता है कि माशरे में जो अच्छे लोग हैं वो मिल मिला के अगर कोई इख्तलाफ है तो उसे दूर कराने की कोशिश करें, और अगर ये मालूम होता है कि वालदैन इस मामले में बेजा जिद या हठधर्मी से काम ले रहे हैं तो फिर बहरहाल उनकी इस ख्वाहिश को कबूल किया जाएगा, क्योंकि ये फैसला असल में उस लड़के और लड़की को करना है। इस तरह के मामलात में जो रिवायतों में बात बयान होती है उनको ऐसी इतलाकी शक्ल कभी नहीं देनी चाहिए जो खुदा ने कुरान मजीद में नहीं दी।
ठीक है,
उनमें दर हकीकत एक चीज एक खास पस मंजर में कही जा रही है, तो जब कहा गया कि ला निकाह इल्ला बिवली तो उसका मतलब यह है कि ये कोई तरीका नहीं है कि आप इस तरीके से निकाह करें, ये कोई मौजू बात नहीं है।
ठीक ठीक,
तो है मौजूनियत ये भी बसा औकात जेर बहस होती है, किसी चीज का अच्छा पहलू ये जेर बहस होता है, उसको उसी जगह रखना चाहिए। निकाह एक मर्द औरत के दरमियान ऐलान है कि हम मियां बीवी होंगे, तो ये हक आप ही का है, आपको यह हक इस्तेमाल करना है लेकिन सलीके के साथ, तहजीब के साथ, यानी हमारी जो माशरत है या हमारी तहजीबी इकदार है उनका लिहाज करते हुए ये काम करना चाहिए।
अच्छा, एक बात जावेद साहब जरा ये बताइएगा, ये औलाद के हवाले, यानी जो बच्चे हैं, फर्ज कर लें कि दो बेटे बेटियां हैं, एक बच्चा ये महसूस करता है, और कभी कभार ऐसा होता भी है, ये भी देखा गया है कि वालिदैन जो है वो एक बच्चे के साथ उनका रवैया नामुनासिब होता है, दूसरों के साथ कुछ और तरीके का होता है, एक के साथ कुछ और तरीके का होता है, उस पर वो बार भी ज्यादा डाल देते हैं, उससे वो इस तरह के मुशक्कत भी उससे ज्यादा चाहेंगे, उससे जो है वो इतना ज्यादा अप्रिशिएट भी उसे नहीं करते, और वो बचपन ही से उसे महसूस होता है कि मैं इग्नोर किया जा रहा हूं। ऐसी सूरत हाल में अब वो बच्चा क्या करे, वो बच्चा अपने वालिदैन के साथ किस तरह का मामला करे, या उसे क्या करना चाहिए, और फिर वालिदैन के भी फराइज क्या हैं कि वो बच्चों को इस तरह से, स्पेशली बेटे और बेटियों के मामले में ऐसा बहुत ज्यादा होता है।
देखिए, वालिदैन को तो हर हाल में अपने बच्चों के साथ इंसाफ का, मोहब्बत का, यकसा शफकत का रवैया रखना चाहिए। यानी अगर वालिदैन ऐसा नहीं कर रहे तो इसका मतलब है खुद वालिदैन की तरबियत में कोई खामी रह गई। यानी हमारे यहाँ ये करना चाहिए कि जिस तरह हम तालीम देते हैं, उलूम व फ़नून सिखाते हैं, इसी तरह हम बच्चों को ये भी बताएं कि जब वो वालदैन बनेंगे तो उनका रवैया क्या होना चाहिए, उन्हें अपने बच्चों के साथ क्या मामला करना चाहिए। अगर इससे मुख्तलिफ कोई चीज़ हो रही है तो वालदैन की इस्लाह करनी चाहिए। अब इस्लाह नहीं हुई, गलती कर रहे हैं, तो तब भी बच्चों के लिए हिदायत यही है कि वो बदतमीजी का रवैया अख्तियार न करें। जब उनका शऊर बेहतर हो तो वो इसकी कोई ना कोई अच्छी तावील करें। अच्छा, अगर वो वालदैन की इस्लाह चाहते हैं इस मामले में, तो अपने बुजुर्गों से मदद ले लें, कोई चचा होगा, कोई मामू होगा, कोई बड़ा होगा, उनको एतमाद में ले लें और इस तरीके से इस्लाह करने की कोशिश करें। तो कोशिश यही करनी चाहिए कि उनके एहतराम के खिलाफ कोई बात ना हो। ताहम वालदैन की इस्लाह इस मामले में बहुत ज़रूरी है। ये हो जाती हैं बातें और बड़ी तकलीफें होती हैं।
अच्छा जावेद साहब, ऐसा ये होता भी है, आपने बिल्कुल सही फरमाया कि इस तरह करते हैं, लेकिन वालदैन का आर्ग्यूमेंट ये होता है, शायद मैं शायद का लफ्ज इस्तेमाल करूंगा, वो कहते हैं बच्चे तो हमारे लिए मसावी हैं, लेकिन किसी एक से ज्यादा एक मोहब्बत होती है, किसी एक, कोई एक जरा लाडला होता है, तो शायद ऐसा महसूस होता हो, बच्चों को ऐसा महसूस होता है कि उनके साथ ये रवैया ऐसा है, लेकिन वालिदैन का पॉइंट ऑफ व्यू ये होता है कि नहीं, हम तो बिल्कुल इक्वल हैं, एक थोड़ा सा लाडला हो सकता है, ऐसा तो ये फितरी चीज है।
ये फितरी चीज है, हो जाता है ऐसा बाज़ औक़ात। मैंने ये देखा है कि पहले बच्चे के साथ बाज़ औक़ात खास तौर पर माएँ जरा ज्यादा जज्बाती ताल्लुक रखती हैं, इंसानी नफ्सियात पर अहवाल भी असरअंदाज होते हैं। अच्छा, बाज़ औक़ात ये होता है कि एक बच्चा बहुत देर से पैदा हुआ है, छोटा है, उसकी तरफ ज्यादा शफकत का, मोहब्बत का रवैया हो जाता है। ये जब तक शफकत, मोहब्बत और इस तक रहता है और थोड़ा सा इसमें फर्क होता है, इससे बड़ा मसला भी नहीं पैदा होता। असल में देखना चाहिए कि क्या हुकूक तो नहीं तलफ हो रहे, क्या दूसरा नज़रअंदाज तो नहीं हो रहा।
ठीक है,
यानी आप अगर ये कहें कि दिल का मिलान बिल्कुल यकसा हो, मुश्किल चीज़ है ये। अच्छा, इसमें औसाफ सिफात का भी बड़ा दखल होता है। कुरान मजीद में उसकी मिसाल मौजूद है कि सैयदना यूसुफ के भाइयों को यही शिकायत थी अपने बाप से, बाप कौन है, वो खुदा का पैगंबर है। अच्छा, मैं ये नहीं कहता कि उनसे कोई बेइंसाफी हुई, लेकिन बहरहाल भाई महसूस करते थे कि यूसुफ ज्यादा अजीज है, ज्यादा महबूब है, उनकी तरफ ज्यादा मिलान है। तो एक बच्चे के औसाफ, उसकी सिफात, उसका रवैया, ये भी बहुत असरअंदाज होता है। बच्चे अपनी तबीयत के लिहाज से भी बहुत मुख्तलिफ होते हैं। एक बच्चा मुमकिन है कि अपने अंदर कुछ सरकशी का मिजाज रखता हो, बात नहीं माननी, नहीं सुननी, कुछ जिद्दम जिद्दा का रवैया अख्तियार कर ले। बाज़ बच्चे बहुत ही शरीफ और नफ्स होते हैं। यानी ये वो चीज़ें हैं कि जो असल में इंसान की तबीयत और उसकी उफ्ताद तबा से ताल्लुक़ रखती हैं। इससे भी वालदैन के रवैयों में कुछ थोड़ा बहुत फ़र्क आ जाता है। ये फ़र्क तो होंगे, इनसे आप इंसानियत को मुबर्रा नहीं करार दे सकते, इंसान इंसान है, लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि किसी का हक तलफ हो जाए, कोई नज़रअंदाज हो जाए, जो ज़रूरी तवज्जो उसको मिलनी चाहिए वो भी ना मिले, आप मामलात करने में भी इस तरह का फ़र्क करने लग जाएं, तो अपनी निगरानी करनी चाहिए। अगर आप खुदा के सामने जवाब दे हैं, तो जिस परवरदिगार ने हमको दीन दिया है उसने ये कहा है कि तुम्हारी पूरी ज़िंदगी कायम बिलकिस्त होनी चाहिए, यानी इंसाफ पर खड़े रहकर मामलात करने में, लोगों से बात करने में, आइज़ा से, अकरबा से, हर जगह हमें यही तलकीन की गई है। दोस्त अहबाब, आप देखेंगे बीवियों के मामले में भी, अगर एक से ज़्यादा बीवियाँ हैं तो अल्लाह ताला ने ये कहा ना कि आपको उनके साथ इंसाफ का रवैया अख्तियार करना। अगर आप इंसाफ का रवैया अख्तियार नहीं करते तो यतीमों की बहबूद की इमरजेंसी में भी आप एक से ज़्यादा शादी न करें। यही कहा ना, वहाँ मसला ये ज़रे बहस आ गया था कि यतीम बच्चे हैं, उनकी परवरिश के लिए तरगीब दी जा रही है, वहां पर भी ये कहा कि अदल जरूरी है, इंसाफ जरूरी है, इंसाफ और अदल के तकाजे हर हाल में पूरे होने चाहिए। तो ये हमें अपनी भी निगरानी करते रहना चाहिए, कहीं हमारा मेलाने तब हमारी बात, हमारा मिजाज, एक बच्चे से कुछ जरूरी मुनासबत, उसके औसाफ व सिफात, ये दूसरों की हक तलफी का बायस न बन गए, क्योंकि उसका रद्दमल देखिए ना क्या होता है फिर। किस्सा यूसुफ से मालूम होता है कि नौबत यहां तक पहुंच गई कि उन्होंने जाके यूसुफ को गोया मारी डाला अपनी तरफ से, कुएं फेंक के आ गए, बाप के साथ झूठ बोला। इसमें वालदैन को भी अपनी तरबियत करनी चाहिए और बच्चों को भी ये देखना चाहिए कि ये कुछ फितरी चीजें हैं और फितरी चीजों को फितरी तरीके से रहना चाहिए।
अच्छा, अब एक हक हुकूक के बारे में बात हो रही है तो एक और इम्पोर्टेंट ये कि एक बच्चा है उसके वालदैन में सेपरेशन हुई हुई है, वो अलग अलग अपनी जिंदगियों में मसरूफ है, माँ अलग है बाप अलग है। अब वो बच्चा वैसे देखा जाए तो नफसियाती तौर पर तकसीम हो गया है, लेकिन अब उसका मामला फिर कैसा, उसको कैसे हैंडल करना चाहिए? उसे एक तरफ बाप का भी ख्याल रखना है, उसका भी जाकर मुलाकात करनी है, उसे भी विजिट करना है, उसकी चीजों का भी ख्याल रखना है, माँ का भी ख्याल रखना है। अब ऐसी सूरत हाल में बच्चे को क्या करना है?
ये बड़ी अलमनाक सूरत हाल है जो बाज़ वक़्त पैदा हो जाती है। देखिए, इसी वजह से मैं तो हमेशा लोगों से कहता हूँ कि उनको बच्चों की पैदाइश से पहले ये अंदाजा कर लेना चाहिए कि निभा होगा या नहीं होगा, ये फैसला उससे पहले कर लें। लेकिन अगर बच्चे की पैदाइश हो गई है तो फिर अपनी तबीयत का भी जायजा लें, अपनी उमंगों और अपनी ख्वाहिशों का भी जायजा लें। अब वो एक जिम्मेदार फर्द की हैसियत से देखें कि उनके किसी इकदाम के नतीजे में एक मासूम पर क्या असरात होंगे, यानी इसमें फिर पूरी कोशिश करनी चाहिए कि घर ना टूटे, वालदैन में अलहदगी ना हो। आपने बच्चे की पैदाइश से पहले फैसला अगर करना है तो कर लें, लेकिन अगर बच्चे की पैदाइश हो गई है तो फिर अपने आप को मियां और बीवी से ज्यादा माँ और बाप समझें, और माँ और बाप अपनी फितरत के लिहाज से इसार के मुकाम पर खड़े होते हैं। फिर कोशिश कीजिए कि अगर कोई नामुवाफ़िकत भी है, नापसंदीदगी भी है, तो उस पर भी काबू पा के आप घर को कायम रखने की कोशिश करें, कम से कम उस वक्त तक कायम रखने की कोशिश करें जब तक कि बच्चा अपने पांव पर खड़ा ना हो जाए या इस पोजीशन में ना आ जाए कि वो अपने बुरे भले को समझ सके या सूरत हाल में किसी नफ्सी उलझन का शिकार ना हो। तो ये वालदैन को भी सोचना चाहिए। ताहम आप जानते हैं कि बाज़ औक़ात हालात ऐसे हो जाते हैं कि अलहदगी हो जाती है, अलहदगी आर्जी भी होती है, ऐसा भी होता है बाज़ औक़ात बरसों के लिए, और ये भी होता है कि मुस्तकिल अलहदगी हो गई, तलाक हो गई, ये हो गया, वो हो गया। ऐसा मामला अगर है तो कुछ तो अमूमी हिदायात है जो कानूनी भी है, वो हमारे यहाँ भी बयान हुई है, रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ भी है कि बच्चा पहले मरहले में तो माँ ही को दिया जाए।
अच्छा,
माँ की तरजीह है। जिस वक्त बच्चा खुद फैसला करने की पोजिशन में आ जाए, बच्चा फैसला करे तो उसने किसके पास रहना है,
ठीक है,
तो पहले मरहले में माँ के पास रहना है। अब अगर माँ ने अलहदगी इख्तियार कर ही ली है तो उसने दुनिया में जीना है और एक माँ और बाप दोनों के तारुफ के साथ जीना है। माँ को फिर अपने ऊपर काबू पाके ये कोशिश करनी चाहिए कि वो बाप के खिलाफ नफरत पैदा ना करे,
ठीक,
बल्कि इज्जत और एहतराम ही उसके दिल में रखे, मुलाकात के मौके फराहम करे, ये मौका दे कि वो बाप के पास वक्त गुजारे, ऐसे हालात ना पैदा करे कि जिसके नतीजे में बच्चे की नफसियात पर बुरे असरात हों। ये इशार फिर उसको करना चाहिए क्योंकि बच्चा उसके पास है। जब बच्चा इस उम्र को पहुंच गया कि अब वो फैसला करेगा तो फिर वो जिसके पास है उसको बिल्कुल यही करना चाहिए। बाप के पास गया है तो बाप को ऐसे ही करना चाहिए कि वो माँ से मिलवाए, जज्बात का ख्याल रखे, ज़रूरतों का ख्याल रखे, दूसरी इस तरह की चीज़ों को महफूज रखे। तो ये दर हकीकत जिम्मेदार इंसानों का काम है कि फिर वो, मेरे लिए तो ये तसव्वुर करना बड़ा मुश्किल हो जाता है बाज़ औक़ात कि अदालत में एक कमरे में बाप से बच्चे को मिलाया जा रहा होता है या माँ से मिलाया जा रहा होता है, इसी तरीके से किसी एक जगह के ऊपर एक दिन के लिए 10 घंटे के लिए बाप ले जा रहा है या नहीं ले जा रहा, ये बड़ी तकलीफ दे सूरत हाल
होती है।
जब ये तकलीफ दे सूरत हाल पैदा हो जाए, यानी अव्वल तो कोशिश करनी चाहिए कि ये पैदा ना हो, लेकिन अगर ये पैदा हो जाए तो फिर माँ भी ये ख्याल करे और बाप भी ये ख्याल करे कि हमें अब पहले से ज्यादा इशार करना है, मुमकिन हद तक बच्चे की नफसियात पर बुरे असरात होने से उसको बचाना।
जावेद साहब, एक बात और बता दीजिएगा, ये आखिरी क्वेश्चन है। आपने शुरू में बताया था कि मासियत के कामों से तो हमेशा बचना ही है, लेकिन हम देखते हैं कि एक एक बाप है या एक माँ है, वो अपनी बरसों की थॉट प्रोसेस या बरसों की स्टडी या बरसों के एक पूरे अमल से गुजर कर एक मकाम तक पहुंचा है, एक उसने चीज इख्तियार की है, मगर वो चाहता है, बाप चाहता है या माँ चाहती है कि उसका बच्चा वो जो चीज उसने बरसों में हासिल की है, इख्तियार की है, वो 2 मिनट में उसे समझ में आ जाए। अब जाहिर है कि वो भले वो मासियत की ही चीज है, उसे रोकना है, उसे अगर रोकना है तो बच्चे को भी उस थॉट प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, हो सकता है कि वो भी फौरन तैयार ना हो, फिर क्या करें?
یہی میں نے اس سے پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ والدین کی تربیت کرنی چاہیے, انہیں بتانا چاہیے کہ ایک وقت ان پر بھی ایسا آیا تھا جب وہ جوان ہوئے تھے, جب ان کے خیالات پیدا ہونا شروع ہوئے تھے, جب ان کے ہاں نئی نئی منگے نئی نئی آرزوؤں نے جنم لیا تھا, تو اس وقت ان کے رویے کیا تھے. والدین کو یہ بتانا چاہیے کہ انسان چشم زدن میں چیزیں قبول نہیں کرتا. اگر سارے لوگ نیا تجربہ کرنے سے باز آ جاتے تو دنیا بہت اچھی ہوتی, لیکن انسان نیا تجربہ کرتا ہے, اس سے بھی بہت کچھ سیکھتا ہے. تو آپ اپنی بات شائستگی سے کہیے, سمجھانے کی کوشش کیجیے, آپ جو کچھ بھی مال ہو مال ہے وہ سامنے رکھ دیجیے, پروز کون سمجھا دیجیے. اس کے بعد اگر بچہ اصرار کرتا تو کر لینے دیجیے تجربہ اسے.
نہیں, یہ جو کہا جاتا ہے کہ وہ نماز نہ پڑھے تو اسے مارو, تو ظاہر ہے وہ یہ جو بات آ رہی ہے, نماز نہیں پڑھ رہا تو آپ بچے کو ماریں گے یا سزا دیں گے.
نہیں دیکھیے, ایک عمر وہ ہوتی ہے کہ جس میں آپ بچے پر تھوڑی سختی کرتے ہیں, وہ بھی بڑے سلیقے سے کرنی چاہیے, حکمت کے ساتھ کرنی چاہیے, حالات دیکھ کے کرنی چاہیے, آپ کس ماحول میں ہیں, کس تمدن میں ہیں, گرد و پیش میں کیا ہے, یہ ساری چیزیں ملحوظ رکھنی چاہیے. تو یہ تو دیکھیے, اگر بچہ گالی دے گا تو کان کھینچے جائیں گے نا اس کے, گلی میں جا کے کوئی بےہودہ کام کرے گا تب بھی ہوگا. تو ایسے ہی نیکی اور خیر کی چیزیں بھی سکھائی جاتی ہیں بچوں کو. اگر وہ نماز کے معاملے میں کوتاہی کر رہے ہیں تو اس میں بھی ان کو بتایا جاتا ہے, اس میں سمجھایا بھی جاتا ہے, کبھی سختی بھی کرنی پڑ جاتی ہے. یہ ساری چیزیں کوئی مطلق چیزیں نہیں ہوتی, یعنی لوگ کرتے کیا ہیں, وہ ایک روایت میں ایک چیز پڑھ لیں گے, یہ دیکھیں گے نہیں کہ یہ بہت سے شرائط و حدود سے ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے جب بیویوں کی اصلاح کرنے کے معاملے میں کہا تو یہ کہا کہ پہلے ہی مرحلے پر یہ کام کر ڈالیں؟
نہیں
نہیں, آپ سمجھائیں بجھائیں ان کو. تو ایسے ہی بچے کے معاملے میں کرنا چاہیے, کسی موقع کے اوپر آپ کو کسی غلطی سے روکنے کے لیے, کسی اچھائی کی طرف لے جانے کے لیے. آخر ماں اگر بچہ انکار کر دے کہ میں ایسے اسکول نہیں جاؤں گا تو بھیجتی ہے نا. اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات ذرا تھوڑی زبردستی کر کے بھی بھیجتی ہے, باپ بھی بھیجتا ہے. تو یہ اسی جگہ یہ چیزیں رکھنی چاہیے, ان کو مطلق نہیں کر لینا چاہیے.
ٹھیک,
یعنی یہ معاملات ایبسلیوٹ نہیں ہوتے. انسانی فطرت, حکمت, حالات, تمدن, ان کا لحاظ کر کے نرمی بھی کی جاتی ہے, سختی بھی کی جاتی ہے. لیکن جب بچہ اس عمر کو پہنچ گیا جہاں وہ اب آرگو کر سکتا ہے آپ کے ساتھ, بات کر سکتا ہے, نہیں پھر آپ دوسرا رویہ اختیار کریں. اب آپ کو بات کرنی ہے, اب سمجھانا ہے. اب اگر آپ سختی کا رویہ اختیار کریں گے تو آپ سرکشی پیدا کر دیں گے, اور خاص طور پر موجودہ زمانے میں, یعنی یہ جس دور میں ہم جی رہے ہیں, یہ اب قبائلی تمدن نہیں ہے, یہ جاگیردارانہ تمدن بھی نہیں ہے. انڈسٹریل ریولوشن کے بعد انسان الگ الگ ہو چکا ہے. برادریوں کی قوت, والدین کی قوت یہ اتنی نہیں رہی, لوگ اتنے منحصر بھی نہیں رہے. ان سب چیزوں کا لحاظ کر کے اب سختی کا رویہ نہیں اختیار کرنا چاہیے.
تھینک یو ویری مچ جاوید صاحب, بہت بہت شکریہ آپ کا. ناظرین, ہم نے آج گفتگو کی والدین کے حقوق و فرائض کے حوالے سے. آپ کے ذہنوں میں اگر کوئی سوالات ہوں تو یہ ای میل ایڈریس جو آپ اسکرال پر دیکھ رہے ہیں, ih@duniatv.tv, یہاں پر آپ ہمیں اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں. اگلے کسی پروگرام میں جب ہم متفرق سوالات کی نشست رکھتے ہیں جاوید صاحب کے ساتھ, آپ کے سوالات کو ان میں ٹیک اپ کر لیں گے. اگلے پروگرام تک کے لیے زبیر احمد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.